हरे कृष्णा। तो आज के इस मंगलवार को हम सब लोग श्री चैतन्य महाप्रभु की कहानी सुनने वाले हैं। गौर पूर्णिमा के उपलक्ष्य में हम कई दिन से गौरांग महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। तो अभी 9 तारीख को हमारे हॉस्पिटल में श्री रामनवमी हनुमान जयंती का कार्यक्रम होगा। तो उस उपलक्ष्य में हम लोग फिर अभी अगले मंगलवार को रामलीला का वर्णन शुरू करेंगे। एक दो मंगलवार ही मिलेंगे शायद राम भगवान के लीला के लिए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के इस बहुत सुंदर लीलाओं में अनेक ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत ही आदर्श भक्त हैं। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है कि चैतन्य महाप्रभु के अवतरण होने के पश्चात और उसके पहले भी जितने भगवान के अवतार हुए हैं, उन भगवान के जितने अवतारों के जितने भक्त थे, वो सारे भक्त अलग अलग रूप धारण करके चैतन्य महाप्रभु की लीला में समाविष्ट हुए। प्रहलाद जो हिरण्यकशिपु के साथ नरसिंह भगवान की लीला में आए थे, हनुमान जी जो राम लीला में आए थे, ऐसे अलग अलग प्रकार के भगवान के भक्त, स्वयं महाविष्णु, स्वयं शिवजी, ऐसे बड़े बड़े विभूति जन सब जो चैतन्य महाप्रभु के लीला में भाग लेने के लिए अवतरित होते हैं। और उनकी विशेषता यह है कि हर एक भक्त ऐसे विशेष भक्त हैं। इनका प्रेम का वर्णन जब ठाकुर हरिदास वृंदावन दास ठाकुर और कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी करते हैं चैतन्य चरितामृत में और चैतन्य भागवत में, और लोचनदास ठाकुर लिखते हैं चैतन्य मंगल इस ग्रंथ में, तो उनकी लीलाओं का वर्णन सुनकर और पढ़कर हम दंग रह जाते हैं, कैसे भक्त हो सकते हैं। तो ये लीलाओं को समाप्त करने के पहले एक व्यक्ति की कथा जरूर बतानी चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा था। वो व्यक्ति का नाम है खोलवेचा श्रीधर। इस नाम का अर्थ है खोलवेचा, मतलब जो केले बेचता है, बोलते ना केले वाला, तो ऐसे कोले वाला मतलब बंगाली में खोलवेचा। तो उनको लोग श्रीधर नाम से जानते नहीं थे, अधिकतर लोग जानते थे खोलवेचा नाम से, क्योंकि वो नवद्वीप के किनारे पे, मतलब बॉर्डर पे केले के पत्ते, केले के फल और केले के रूट्स होता ना, वो जो काट कर बेचते हैं ना केला ख़त्म होने के बाद में, अंदर का गाभा बेचते हैं, वो तीनों चीज़ बेचते थे। कभी कभी केले के पत्ते की कप बना के भी बेचते थे। और वो इतने गरीब थे कि उनकी धोती में छेद अधिक थे, वस्त्र कम था। धोती पहनेंगे ना, धोती कम दिखाई देगी, गड्ढे ज़्यादा दिखाई देंगे। और उनकी झोपड़ी में छत था, उसके अंदर छत कम था, गड्ढे ज़्यादा थे। इतने गरीब थे वो, उनके पास कोई साधन नहीं था, कोई उनके पास वस्तु नहीं थी, एक टूटी फूटी झोपड़ी थी जो हमेशा उसके अंदर से पानी बहता था बारिश के मौसम में। और वो जितना कमाई करता था उसको एक विशेषता थी, पूरे नवद्वीप में वो फेमस था कि वो सबसे कम दाम में केले के पत्ते, फल और जो उसके रूट्स हैं वो बेचा करता था। इसलिए उनके पास से कोई भी ग्राहक कभी भी कोई भाव नहीं करता था कि इतना में दे दो, उतना में दे दो, कम करो, ऐसा नहीं। वो जो बोलेगा उसमें लेते थे, क्योंकि वो सबसे कम दाम में बहुत प्रामाणिकता से वो केले के पत्ते और वगैरह वस्तु बेचता था। और सभी पूरे नवद्वीप में सबसे कम होने के बाद भी जब वो व्यवहार करता था तो उतना सा कम पैसा उसको मिलता था, उसमें से भी आधा पैसा जो है वो गंगा देवी की पूजा में व्यतीत करता था। गंगा देवी जो नवद्वीप धाम में बहती है ना, भगवान के चरणों से निकलती है वो, तो भगवान का चरणामृत है गंगा देवी। गंगा देवी के पूजन में वो जितना सा कम आय आमदनी करता था उसमें से आधा धाम जो है वो जब गंगा जी की सेवा में अर्पण करता था। तो चैतन्य भागवत जो लिखा है, उन्होंने लिखा है कि ऐसा भक्त बहुत विरला है, आदर्श भक्त है, जो अपने आमदनी का आधा हिस्सा भगवान की सेवा में अर्पण करता है। और रात के 12 घंटे वो सोता नहीं था, रात भर भगवान के नाम को पुकारता था, हरी हरी हरे कृष्ण हरी हरी, हर रात को। तो लोगों को लगता था कि बेचारा गरीब आदमी है, बिजनेस नहीं हो रहा है, शायद खाने को चावल नहीं मिल रहा है, इसलिए भूख से रो रहा है। तो बहुत सारे लोग उसके घर पे खाने की वस्तु फेंकते थे, अरे खाओ उसको, चुप रहो लेकिन हमको सुने दो। बोलते इतना क्या फायदा है इसको, इतना चिल्लाता है हरी हरी, क्या कर रहे हैं हरी उसके लिए, ऐसे भी कुछ लोग बोलते थे। लेकिन बहुत लोग बोलते इसको गांव से बाहर फेंकना चाहिए, रात को बहुत तंग करता है, सोने को देता नहीं है, खुद भूखा है तो हमको तंग क्यों करता है, जाके कमाओ और खाओ। इस तरह से लोग बोलते कि वो बिना किसी डिस्टर्ब होते हुए रात भर भगवान के नाम का बड़े ही प्रेम से उसको पुकारता था। इसलिए मैं आपको बोलता ना पुकारो पुकारो, क्योंकि ये जो भक्त हैं जिस प्रकार से पुकारते हैं भगवान को, भगवान मजबूर होकर आते हैं उनको दर्शन देने के लिए जिस प्रकार से पुकारते हैं। हाँ, जब भगवान का नाम का कीर्तन हो रहा है, हम लोग खिड़की के बाहर देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, मन में कुछ विचार आ रहा है, बीच में का दो शब्द बोल लिया, पूरा हाथ मंत्र में छोड़ दिया, ऐसे ही पुकारने से भगवान नहीं आते, क्योंकि उस पुकार में कोई जान ही नहीं है, वो पुकार है ही नहीं, खाली वो ऐसे ही मुंह से चल रहा है, म्यूजिक इसलिए चल रहा है। कुछ लोगों को जब तक म्यूजिक नहीं बजता तब तक मुंह से नाम ही निकलता नहीं, उनका सारा नाम कीर्तन जो है म्यूजिक पर डिपेंड रहता है। लेकिन समझने की बात यह है कि म्यूजिक जो है वो केवल अकम्पनीमेंट, मतलब साथ देने के लिए है, जो कीर्तन का नायक है वो भगवान का नाम है। इसलिए एक बार महाराज जी ने अभी अभी किसी प्रवचन में कीर्तन करने के बोला कि मृदंग करताल बंद करो, और केवल तालियां बजा के उन्होंने कीर्तन किया, ये समझाने के लिए कि कीर्तन में मृदंग करताल पियानो ये इम्पोर्टेंट नहीं होता है, साथ देते हैं वो सेवक है कीर्तन के, लेकिन नाम जो है वो प्रधान होता है, और वो जो पुकारने को सीखता है उसी को भगवान प्रतिसाद देते हैं, उसी को पता चलता है कि ये नाम यानी कि नाम प्रभु यानी कि स्वयं भगवान है। तो इस प्रकार से व्याकुल होकर रात को बड़े प्रेम से श्रीधर भगवान को पुकारा करता था। जनता की निंदा, जनता की टीका टिप्पणी सुनकर भी उनके द्वारा अपमान सहन करते हुए, कोई फेंक रहा ना कोई, ये लो रोटी खा लो, ये लो उंजन खा लो, चुप रहो मुंह बंद करो, ऐसे सब सुनते हुए भी बड़े प्रेम से भगवान को पुकारता था। और निमाय पंडित जो चैतन्य महाप्रभु का बचपन का नाम है, वो हर रोज उसके पास जाया करते थे, और हर रोज उसके पास जाकर केले का पत्ता फल और रूट्स खरीदते थे। एक ही ऐसा ग्राहक था श्रीधर का जो उनके साथ बहस करता था रोज, मतलब कि आप कितने महंगे बेचते हो, हाँ पूरे नवद्वीप में सस्ता मिलता है तो इतने महंगे बेचते हो, मतलब नहीं भगवान, मतलब भगवान तो जानते नहीं थे, भगवान ब्राह्मण पुत्र के रूप में उनको पहचानते थे कि भाई जगन्नाथ मिश्र नाम के जो अच्छे ब्राह्मण नवद्वीप में रहते हैं उनका ये पुत्र है, ये ब्राह्मण पुत्र मेरे पास तो सबसे कम कम दाम, कहीं भी जाके पूछ लो सबसे कम दाम में मैं यहाँ पर केले के पत्ते बेचता हूँ। नहीं 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 आप बहुत महंगा बेचते हो, आप हमको आधा दाम में दे दो। ऐसे कैसे करूँ फिर, मैं गंगा जी की पूजा कैसे कर सकता हूँ, नहीं नहीं आपको देना चाहिए। फिर ऐसे दो घंटे रोज, इसमें वर्णन किया है, इसमें भी लिखा है, चैतन्य भागवत में भी लिखा है, चैतन्य चरितामृत में भी लिखा है कि दिन के रोज दो घंटे सवेरे के चैतन्य महाप्रभु श्रीवास श्रीधर के पास जाकर बहस करते थे, और वो कहते थे ऐसा क्यों कर रहे हो, आप तो ब्राह्मण के पुत्र हो, मैं जानता हूँ कि ये सबको ये सब खरीद के बेच के अब जो पैसा आता है उसके गंगा की पूजा करते हो, लेकिन तुम जानते नहीं हो कि गंगा का पिताजी मैं हूँ, मेरे चरणों से गंगा निकलती है। अरे ब्राह्मण पुत्र विष्णु 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 क्या बोल रहा है, कितना घमंडी ब्राह्मण है ये, इसके पिता को बताना चाहिए कि इसको ये ज्ञान नहीं है, क्या बोल रहा है इसको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो जानते नहीं थे कि स्वयं भगवान है। इसे उनको सहन नहीं होता कि ब्राह्मण पुत्र आके बोल रहा है कि मैं विष्णु हूँ, मेरे चरणों से गंगा निकलती है। बोले हे श्रीधर तुम जान लो कि ये सत्य बोल रहा हूँ मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सत्य ही था एक्चुअली वो, लेकिन लीला ऐसी है भगवान की कि वो भगवान अपने भक्त के रूप में आए हैं। हाँ बता रहे हैं उसको तोला के बालक अपने हठ में या घमंड में या बालकपन में ऐसे बोल रहा है, तो ऐसे मत कहा करो, ये अपराध होता है, ऐसे गंगा जी का अपराध मत करो, ऐसे ब्राह्मण को श्रीधर बोल रहे हैं। और आखिर में दो घंटे की बहस करने के बाद में वो कहते हैं कि देखो ऐसा है, आप मैं सही दाम बोल रहा हूँ, आप सही दाम दे दो और ले लो, या तो कहीं और जाओ लेकिन मुझे तंग मत करो। एंड में चैतन्य महाप्रभु उसका केले का पत्ता फल और रूट लेके भागते थे बिना किसी दाम देते हुए। रोज दो घंटा बहस करने के बाद में आदान प्रदान पैसे का ये वो करने के बाद में एंड में वो झट से उसको पत्ता लेके भाग देते थे, समझे वाया बालक गया भाग के गया। और रोज उस नए केले के पत्ते पर अपने घर जाकर सच्ची माता के द्वारा परोसा हुआ प्रसाद पाया करते थे रोज। और उसके छत पर एक वेली थी, पुराने गांव आप देखते हैं, अभी भी गांव में जाएंगे ना आपको देखेंगे छत पे बहुत सारे फूल फूल उगते उगते रहते हैं। तो उसके छत पे एक कद्दू यानी कि भोपला होता है ना, भोपला, उसका एक झाड़ आता था, वेल, वेलू बोलते हैं उसको, क्रीपर, और रोज एक भोपला उस पर आता था। और रोज वो आया पका हुआ भोपला जो है वो नेके निकाल के सच्ची माता को लाके देते थे चैतन्य महाप्रभु के घर पे, और सच्ची माता उनको वो खिलाती थी। ऐसा भक्त था इस श्रीधर, हर रोज। और विशेषता उसकी ये थी कि रात में जब वो जप करता था तो खाली नेबर लोग उनको जानते थे कि कोई परेशान करने वाला आदमी यहाँ पर रात को चिल्लाता है, लेकिन नवद्वीप के अंदर जितने भक्त थे चैतन्य महाप्रभु के, जो महाप्रभु के संग रहा करते थे, घुमा करते थे, कीर्तन करते थे, उनके साथ लीला करते थे, उनके घर में जाके प्रसाद पाते थे, उनमें से किसी को भी इसकी पहचान नहीं थी, किसी को जान पहचान नहीं थी कि श्रीधर कौन है। तो कैसे मालूम पड़ा लोगों को श्रीधर कौन है? एक दिन क्या हुआ, ये रोज का लीला है उनका, रोज का केले बेचने समय झगड़ा करना, रोज की बहस करना, और रोज आखिर में फ्री में लेके भागना। और इतना बहस करने के बाद में भी, फ्री में लेके भागने के बाद, श्रीधर को न जाने हृदय में बहुत ज्यादा आनंद हुआ करता था, और उसको खुद को आश्चर्य होता था, अरे मैंने इसका बहस, इतने मैंने बहस की उसके साथ में, और मैंने इतना दाम मांगा उससे, फिर दाम नहीं चुकाते हुए भाग गया लड़का, फिर भी उसके हृदय में आनंद क्यों हो रहा है उसका पता नहीं चलता था, कितनी खुशी का अनुभव होता था उसको। तो एक दिन रोज चैतन्य महाप्रभु श्रीवास पंडित के घर पे, जो नारद मुनि के अवतार है, हाँ, नारद मुनि स्वयं श्रीवास पंडित बनकर इस लीला में सहभागी हुए, तो उनके घर में ही चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों को आकर मिलते थे। हम लोग, अब याद है ना, आप गए थे श्रीवास आंगन में, जहाँ पर हम लोग बैठ के कीर्तन किया था, नाच भी किया था बहुत सुंदर यात्रा में, लास्ट ईयर हम गए थे, लास्ट ईयर। तो वो आंगन में दिन भर भक्त लोग कीर्तन किया करते थे। एक दिन चैतन्य महाप्रभु बोले कि अरे रात को हम लोग सोते हैं और रात पूरी वेस्ट कर देते हैं सोकर, क्यों ना हम रात को कीर्तन करें। भक्तों ने बोला हरि बोल। अगर हम आपको बोलेंगे चलो कल से हम रात को भक्ति विधान में कीर्तन करेंगे, आप बोलेंगे ऐसा क्यों कर रहे हैं हाँ। लेकिन भक्तों ने तुरंत हरि बोल करके बोला यस यस, रात को हम लोग तमोगुण में सोते हैं, माया में सोते हैं, हमको नहीं सोना चाहिए, आप जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। और उसी दिन से, ऐसे नहीं कि प्रभु जी चार पांच दिन के बाद करेंगे चलेगा क्या ऐसा नहीं, ऑन द स्पॉट उसी दिन से चालू हो गया। और एक साल तक चैतन्य महाप्रभु ने उनके घर में रात भर कीर्तन किया, और उस कीर्तन में ऐसे अनुभव लोगों को होते थे, लोग ऐसे उड़ते थे हवा में, लोग बेहोश होते थे, उसके रोमांच खड़े होते थे, किसी आंखों से अश्रु आते थे, कोई रोमांच पा के शरीर कंपन होता था, ऐसे अति आनंद के अलग अलग अनुभव वहाँ हुआ करते थे। और वो अंदर क्या चल रहा है ये देखने के लिए बहुत बाहर के लोग दरवाज़ा खटखटाते थे, लेकिन दरवाज़ा खोलते नहीं थे, क्योंकि जो लोग शुद्ध भक्त है ऐसे ही लोगों को प्रवेश हुआ करता था। इसलिए जो ब्राह्मण लोग शुद्ध भक्त नहीं थे वो लोग गाली देते थे कि ये लोग अंदर स्त्रियों को गलत काम करते हैं, दरवाजा बंद करके इनका गलत व्यवहार अंदर होता है, सब जाके निंदा करते थे जाके। और एक ब्राह्मण ने चैतन्य महाप्रभु को नदी के किनारे मिले, वो बोलते आप हमें अंदर प्रवेश देते क्यों नहीं हो? तो कहते मुझे मालूम नहीं, मैं तो नित्य करते रहता हूँ, पता नहीं आपको कोई प्रवेश देता नहीं या देता है नहीं देता है, मुझे पता नहीं इस बात का। तो ब्राह्मण को बहुत गुस्सा था कि मैं ब्राह्मण हूँ फिर भी मुझे इनके आंगन में कीर्तन करने को प्रवेश नहीं देते। तो वो झट से शाप देते महाप्रभु जी को कि आपका सारा आनंद जो है, सारा सुख जो है वो खत्म हो जाएगा। तो चैतन्य महाप्रभु जी शाप सुनते ही नाचने लगते, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हाँ हमको अगर शाप देंगे कोई तो ये लो। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत खुश हो गए, मैंने कहा कि मेरी ऐसी इच्छा थी कि मेरा सारा भौतिक सुख खत्म हो जाए और मेरा जीवन जो है भगवान की सेवा में और प्रेम में अर्पण हो जाए। आप मेरे शत्रु नहीं हो क्योंकि आप साथ दे रहे हो, आप मेरे मित्र हो क्योंकि आपने मुझे ऐसा साथ दिया है, निश्चित ही मैं भौतिक दुखों से मुक्त होने वाला हूँ। ऐसे कई लीलाएँ हैं उस रात की। तो उसमें एक दिन चैतन्य महाप्रभु आते हैं और जो भगवान विष्णु का आसन है उस पर बैठ जाते हैं। तब तक उन्होंने किसी को बता नहीं था कि वो भगवान है, भगवान के भक्त के रूप में सारा व्यवहार करते थे। तो उस दिन उन्होंने वहाँ से भगवान का मूर्ति को सब बाजू में रखा, शालिग्राम की मूर्ति को बाजू में रखा और खुद जाके बैठ गए। उन्होंने कहा कि मेरी पूजा करो, मेरे उत्सव के, मेरे अभिषेक के गीत गाओ, मुझे भोग व्यंजन लेके आओ, मेरे फूलों से पूजा करो, मुझे फल फूल से पूजा करो। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए लेकिन दिल से खुश भी हो गए, उनको बहुत दिन से ये करना था लेकिन वो चैतन्य महाप्रभु उनको मना करते थे। तो उस प्रसंग को बताया गया है कि वो सत प्रहरी प्रसंग है, सत प्रहर की लीला। मतलब एक प्रहर 3 घंटे का होता है और 7 प्रहर कितने घंटे के होते हैं, 21 घंटे के। तो 21 घंटा तक उस दिन उस घर में श्री चैतन्य महाप्रभु ने महाप्रकाश लीला किया। महाप्रकाश यानी उस लीला में उन्होंने जितने भी भक्त थे उन सब भक्तों को उनके उनके इष्ट भगवान का दर्शन दिलाया। मतलब मुरारी गुप्ता जो थे वो हनुमान जी के अवतार है, तो मुरारी गुप्ता को उन्होंने स्वयं श्री रामचंद्र का दर्शन दिलाया, सीता राम लक्ष्मण हनुमान का दर्शन दिया। इस तरह से अलग अलग भक्तों को अलग अलग दर्शन दिया। तो उसमें सभी भक्तों को उन्होंने बुलाया, जितने भक्त थे नवद्वीप सबको बुलाया, एक एक करके सबको कृष्ण प्रेम दे दिया, सबको कृष्ण प्रेम से ओत प्रोत कर दिया। जो लोग थोड़े से बाकी थे शुद्ध भक्त होने के, सबको उन्होंने शुद्ध कृष्ण प्रेम का वरदान दे दिया, उसे सब पर कृपा किया। लेकिन जो वैष्णव अपराधी थे, जो लोग कर्मकांडी थे, जो लोग ज्ञानकांडी थे, केवल वर्ण को पकड़ने वाला थे कि ब्राह्मण हूँ, ऐसा लोगों को उन्होंने उनको प्रवेश नहीं दिया उसके अंदर। और जो लोग मायावादी लोगों के बीच में मिलते थे उनको जाके, ऐसे भगवान के अपराधी लोगों को उन्होंने वहां प्रवेश नहीं दिया। तो उस लीला के अंदर मैंने आपको क्या बताया था कि कैसे चैतन्य महाप्रभु के भक्तों को पता चला कि श्रीधर कौन है, क्योंकि उस लीला के अंदर विसरणली बीच में वो कहते हैं कि जाओ श्रीधर को लेके आओ। सब लोग एक दूसरे को देखते हैं, अरे कौन है श्रीधर, ये कभी नाम नहीं सुना था उसका आज तक। इतने भक्तों के अंदर भगवान चर्चा करते हैं लेकिन श्रीधर का नाम सुना नहीं था, कौन है ये श्रीधर। तो एक दूसरे को देखते हैं, फिर उनको उत्तर नहीं मिलता है, फिर भगवान को देखते हैं कि कौन है श्रीधर। तो कहते हैं गाँव के किनारे में जाओ जहाँ गाँव खत्म होता है, नवद्वीप नहीं अंतरद्वीप जो है मायापुर, उसकी वेशी में सीमांत द्वीप है, इस तरफ और द्वीप है, ऐसे बहुत सारे द्वीप हैं, तो उसके एंड में श्रीधर का गाँव है। तो गांव के एंड में जाओ और जिस दिशा में आपको हरी हरी सुनाई पड़ता है उस दिशा में जाओ, फिर आपको एक व्यक्ति नजर आएगा जिसके मुख से वो हरी हरी आ रहा है, वही श्रीधर है। क्या पहचान है, देखो व्हाट अ इंट्रोडक्शन। ऐसी हमारी पहचान होनी चाहिए, कोई नाम की आवश्यकता नहीं है, जिस दिशा में हरी का नाम आ रहा हो वो व्यक्ति का नाम श्रीधर है। कितनी सुंदर पहचान है। तो सब लोग हवा की गति से निकलते हैं कि अरे महाप्रकाश के समय श्री चैतन्य महाप्रभु किसी भक्त का नाम लेकर पुकार रहे हैं, मतलब कितना महान भक्त होगा वो, उसकी पहचान कैसे दी है, जो हरि को पुकारता है उसको जाके ढूंढ के निकालो। सब लोग निकलते हैं उस घर से ढूंढते ढूंढते, हरि की आवाज़ सुनते सुनते निकलते हैं, उस किनारे में पहुंचते हैं। सीमांत द्वीप में कोने में एक टूटी फूटी झोपड़ी रहती है, वहां से वो हरी हरी की आवाज़ निकल रही है, तो वो झोपड़ी में घुसते हैं। तो ये श्रीधर जो है बड़े ही व्याकुल होकर भगवान को पुकार रहा है, आंखों से आंसू लेकर, हरी हरी बोलिए, हरी हरी, हरी हरी। तो सब अंदर जाते हैं और पुकारते हैं, बोलते हैं कि आपको श्री चैतन्य महाप्रभु पुकार रहे हैं, निमाई पंडित पुकार रहे हैं। क्या मुझे पुकार रहे हैं, मुझे पुकार रहे हैं, ये सुनकर वो बेहोश हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि वो अपने आप को योग्य नहीं समझते हैं, ये एक शुद्ध भक्त की और पहचान है, वो किसी भी गौरव को स्वीकार नहीं करते हैं, वो अपने आप को महत्वपूर्ण समझते नहीं है। रणादपि सुनिचे न तरोपि सहिष्णा, अपने आप को तृण से भी नीचा मानते हैं, तुच्छ मानते हैं, मतलब मुझे पुकार रहे हैं ये, मुझे पुकार रहे हैं, बात सुनकर ही बेहोश हो जाते हैं। तो ये लोग लीला के अंदर इतने व्यस्त रहते हैं, वो उधर वेट नहीं करते कि वो होश में आ जाए, उसको बेहोश ही उठाते हैं और सीधा लेके जाते हैं बेहोश की बेहोशी। और वहां जाकर चैतन्य महाप्रभु उसको, श्रीधर उठो श्रीधर, ऐसे कहते श्रीधर जग जाता है और देखता है, सब लोग देख रहे हैं, अरे कौन है ये व्यक्ति, क्योंकि जो नहीं गए थे वो देख रहे हैं कि कौन होगा ये व्यक्ति, कैसा होगा ये व्यक्ति, देख रहे तो बेहोश आया वहां पर। तो सब लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है अभी। श्रीधर को भगवान बोलते हैं, हे श्रीधर याद है तुम्हें, मैं तुम्हारे पास केले के पत्ते का भाव करने आता था रोज, याद है मैं रोज तुम्हारे से फ्री में केले के पत्ते लेके जाता था। एक दिन मैंने आपको कहा था कि तुम्हारे पास बहुत धन है, तुम केले के पत्ते बेचकर बहुत धन कमा कर छुपा के रखे हो, मैं एक दिन पूरे विश्व को सारा धन जो है वो दिखा दूंगा तुम्हारे पास क्या दिन धन है। तो आपने मुझे कहा था कि हे भगवान मैं तो गरीब आदमी हूँ, मेरे पास कुछ केले के पत्ते बेचता हूँ वो भी सबसे कम दाम में, कहाँ मेरे पास धन है। नहीं नहीं मैं जानता हूँ तुम्हारे पास बहुत बड़ा धन है और तुमने सब कहीं छुपा के रखा है उसको। तो देखो मेरी झोपड़ी को देखो, मेरे वस्त्र को देखो, किधर है मेरे पास धन, एक दिन आएगा मैं तुम्हारा धन को सबको दिखा दूंगा। तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु उसके पास गए, उसके पास एक टूटा फूटा मटका ऐसा छोटा था, हम बोलते हैं तांब्या, बोलते तांब्या, ऐसा एक मटका था धातु का। सब जगह से वो चपटा हो गया था मार खा के नया भी नहीं था, पुराना था बहुत, सब जगह से डेंट लगा था उसको। और वो पात्र उसके पास में था जिससे वो लैट्रिन भी करते थे, पीने के लिए पानी भी इस्तेमाल करते थे और भी काम के लिए, उसी को जैसे अपने थे ना गाड़गे बाबा, उनका जो गाड़गा था पात्र था, वो सब काम पात्र में करते थे। मतलब विरक्ति का लक्षण है वो, जो संत विरक्त होते हैं तो उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ का। तो वैसे इनके पास एक पात्र था जो वो शौच के लिए भी इस्तेमाल करते थे। चैतन्य महाप्रभु गए, उस पात्र में पानी था, तो उस चैतन्य महाप्रभु ने उस पानी को सीधा हाथ में लिया और पी डाला। बोले क्यों ऐसे कर रहे हो, ब्राह्मण के पुत्र हो तुम, ऐसे क्यों कर रहे हो, ये तो मेरे शौच का पात्र है, तुम भ्रष्ट हो जाओगे। बोले नहीं, यही पात्र में जो जल है वो सबसे बड़ा धन दौलत है, ये मैं पूरे विश्व को बताना चाहता हूँ। तो बहुत उसको दुख हुआ कि ऐसे क्यों कर रहे हैं, ये सही नहीं है, मैं तो इतना पतित आदमी हूँ, मेरा शौच का पात्र का पानी जो है ये ब्राह्मण का पुत्र पी रहा है, बहुत दुख होता है। तो महाप्रभु उनको याद दिला रहे हैं, बोले श्रीधर तुम मेरे जन्म जन्मांतर के भक्त हो। अभी वो तो इस समय वो भगवान के भाव में है, तो भगवान का रूप प्राइवेटली भक्तों को दिखा रहे हैं। हाँ सब मोबाइल को बंद कर दो, तो उस समय वो भगवान का दर्शन दे रहे सबको। तो कह रहे कि हर जन्म में तुम मेरा मेरे भक्त हो और हर जन्म में मेरी याद और स्मृति करते करते तुमने शरीर छोड़ा है और बार बार मेरे दिलाओं में तुमने भाग लिया है और मुझे आनंद दिया है। श्रीधर मांगो मांगो, तुम्हें क्या चाहिए, मैं आज तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तो श्रीधर कहते हैं कि मुझे कोई इच्छा नहीं, मुझे आप क्यों देना चाहते हो, तुम संतुष्ट हो। नहीं नहीं, आपको मुझसे आज वरदान देना ही चाहिए। बोले भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हें दर्शन दे रहा हूँ। और अचानक गौरांग महाप्रभु सांवले रंग के बन जाते हैं, श्री कृष्ण का दर्शन देते हैं। भाजी में देखते हैं तो नित्यानंद प्रभु बलराम जी बन जाते हैं, उनके पीछे देखते हैं तो क्या है, लक्ष्मी देवी पंखा कर रही है उनको। अचानक उनके पीछे अनंत शेष प्रकट हो जाता है, उनको छत्र छाया देता है। अचानक उनके पीछे पूरा वृंदावन प्रकट हो जाता है, गाय प्रकट हो जाती है। और सबका दर्शन करते करते बेहोश होता है श्रीधर। फिर चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं श्रीधर उठो श्रीधर, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, मांगो मांगो मुझसे मांगो। अभी अगर हमारे सामने भगवान प्रकट हो जाएंगे और बोलेंगे मांगो मांगो मीनानाथ मांगो, हाँ अनिल मांगो, हाँ सिस्टर रति के लिए मांगो, तो आप बोलेंगे अरे फ्लैट चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, फिक्स डिपॉजिट चाहिए, बच्चों को एजुकेशन चाहिए, शादी होनी चाहिए, बड़ी जैसे तुरंत तैयार हो जाएगी हमारे मन में। यहाँ पर भगवान कहते हैं कि आप कुछ भी मांगो मैं देने को तैयार हूँ। आज पहले बोलते हैं अष्ट सिद्धि आपको देता हूं मैं, ले लो अष्ट सिद्धि। तो मुझे नहीं चाहिए, ये डिस्टर्बेंस है मेरे लिए। अभी आप समझते हैं अष्ट सिद्धि का मतलब क्या है। आठ सिद्धियां होती है, आठ सिद्धि, उसमें से एक का वर्णन करूंगा, सबका वर्णन नहीं करूंगा क्योंकि आपको बहुत लालच उत्पन्न हो जाएगा, हमको भी चाहिए। इसलिए मैं एक ही बताता हूँ, खाली एक दो बता दूंगा। एक सिद्धि ऐसी है कि आप सूरज के किरण पर बैठ कर सूरज के लोक में जा सकते हो, यू कैन ट्रैवल टू सन प्लैनेट। एक सिद्धि है प्राप्ति सिद्धि, आप इच्छा करेंगे तो आपकी केवल इच्छा से एक लोक निर्माण हो जाएगा, जैसे कि ब्रह्मा लोक, स्वर्ग लोक, भूवर लोक, ऐसे एक लोक आपके लिए अलग से बन जाएगा, सूर्य मालिका से अलग, और आपके आप वहाँ के राजा होंगे और सब कुछ वहाँ पर जो भी है वो आपका होगा, उसका कहते हैं प्राप्ति सिद्धि। केवल लोक ही नहीं, प्राप्ति मतलब आप जो भी प्राप्त करने की इच्छा करोगे वो आपको प्राप्त हो जाएगा केवल इच्छा करने से, उसको कहते हैं प्राप्ति सिद्धि। फिर लगीमा महिमा अनिमा, आप सबसे हल्के बन जाओगे, दो अणु के बीच में से आप गुजर सकते हो, इतने छोटे बन जाओगे। और इतने बड़े बन जाओगे कि दुनिया में कोई वस्तु आपके साइज की नहीं होगी, महिमा सिद्धि, अनिमा सिद्धि, लगीमा सिद्धि। ऐसे अनेक सिद्धि प्राप्त करने के लिए ऋषि मुनि अनेक लाखों वर्ष जो है तपस्या करते रहते हैं ये सिद्धियां प्राप्त करने के लिए, और वो कुछ प्राप्त करके फिर यहाँ पर आते हैं और बिजनेस करते हैं, उसके ऊपर लोगों को चमत्कार दिखाते हैं और उनसे पैसा कमाते हैं। ये आठ सिद्धियां हैं, वो एक झटके में एक केले बेचने वाले को चैतन्य महाप्रभु बोले ले लो, और क्या बोल रहे हैं, हाँ दे दो, वाह थैंक यू माय लॉर्ड, थैंक यू वेरी मच, ऐसा नहीं बोल रहे, बोले भगवान मुझे मत दो, ये मेरे जीवन में एक डिस्टर्बेंस है, ये मुझे डिस्टर्ब करेगा, ऐसा हम बोल सकते हैं किसी को? फिर वो कहते हैं ले लो, मैं आपको देना चाहता हूं, ऐसा करता हूं श्रीधर, मैं आपको एक लोक का राजा बना देता हूं। राजा बनकर मैं क्या करूंगा? यहां पर अभी इलेक्शन आ रहे हैं उस महीने के बाद में, अरे बहुत लोग एक राजा बनने के लिए तड़प रहे हैं, बहुत लोग, बड़ी लाइट लैशिंग, बड़ी पेपर में फोटो आता है लंबा ऐसा, 8-10 लोगों का जो पंतप्रधान बनने के लिए इच्छुक है और सबके पांव हाथ चाहे बाल सब खींच रहे हैं पंतप्रधान बनने के लिए। और यहां पर भगवान उसको रेडीमेड बोल रहे हैं कि मैं आपको एक लोक का राजा बना दूंगा। बोले मुझे नहीं चाहिए भगवान, श्रीधर ले लो, मेरी इच्छा है कि मैं कुछ दूं आपको, आज कुछ मांगो मुझसे। तो भगवान कहते हैं, क्योंकि तो सब कुछ जो भी बोलते हैं भगवान ना ना बोलते जाता है, रेल में कहते हैं, मैं आपको सब पढ़ के दिखाता हूं, बहुत सुंदर वर्णन है इसका। उठो श्रीधर उठो, आप मेरी प्रार्थना करो। तो कहते अरे मैं प्रार्थना कैसे करूंगा, मैं तो सादा सीधा केले बेचने वाला, मैंने कोई शास्त्र नहीं पढ़ा है, ना कोई श्लोक पढ़ा है, मुझे कुछ नहीं आता है, मैं कैसे बोलूँगा आपकी प्रार्थना? ये तो सब पंडित लोग यहाँ खड़े हैं, वो बड़े बड़े अच्छे अच्छे शब्दों में अच्छे अच्छे काव्य बनाकर आपको स्तुति करते हैं, मैं तो उसको योग्य भी नहीं हूँ। बोले कोई बात नहीं, आप मुझसे कुछ भी बोलो, मैं उसको प्रार्थना के रूप में स्वीकार करूँगा। देखो भगवान क्या बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है कि कोई पंडित है, कोई श्लोक जानता है या कोई संस्कृत का अभ्यास किया है, वही भगवान को प्रार्थना कर सकता है, ये गलत फहमी है। अगर हृदय में भक्ति भाव है तो आपके मुंह से जो भी टूटा फूटा निकलेगा वो भगवान कविता के रूप में, प्रार्थना के रूप में स्वीकार करेंगे। तो कह रहे हैं कुछ भी बोलो आप श्रीधर अपने मुंह से, मैं उसको प्रार्थना के रूप में स्वीकार करूंगा। भगवान लालायित है आपके शब्द सुनने के लिए, अगर आप भक्त हो तो फिर उसको सुस्ता नहीं, क्योंकि वो आप जानते हैं कहानी, जब ध्रुव महाराज को विष्णु का दर्शन हुआ था, तो ध्रुव महाराज भी स्वयं क्षत्रिय थे, वो तो पंडित नहीं थे, तो बोला भगवान ने उनको, बोलो ध्रुव बोलो, मेरी स्तुति करो, मुझे प्रार्थना बताओ। तो वो सोच रहे क्या बोलूँ कैसे बोलूँ, तो भगवान अपना शंख निकालते हैं और उसके सर को स्पर्श करते हैं, जैसे शंख का स्पर्श होता है उसके मुंह से कविता निकलती है पूरी, एक के बाद एक श्लोक बोलता है जोरदार एकदम, भगवान को प्रसन्न कर देता है। उसी तरह से भगवान की इच्छा से सरस्वती देवी जो है वो श्रीधर के जिह्वा पर बैठ जाती है और श्रीधर धड़ाधड़ भगवान को सुंदर सुंदर प्रार्थना करने लगता है, क्योंकि उसके अंदर जो भाव तो था ही ना, उसको काव्य और जो श्लोक के रूप में उसको नहीं मुमकिन था, तो सरस्वती की मदद से उसके भाव को सरस्वती जी काव्य पंक्ति बना देती है और उसके मुख से सुंदर काव्य निकलता है भगवान की प्रार्थना में। और उसमें वो बहुत सारी सुंदर बातें बताता है, कुछ बातें मैं बताऊंगा। वो कि श्रीधर कहता है कि शुद्ध भक्ति जो है आपके हृदय में रहती है भगवान, और जो व्यक्ति शुद्ध, जो अभी इस लीला में आपने उसको अपने शरीर से बाहर निकाल कर सब लोगों में बांट दिया है, ऐसे बोल रहे हो। तो बोलते हैं कि शुद्ध भक्ति के शक्ति से भीष्मदेव ने आपको युद्ध में परास्त किया, हाँ भीष्मदेव ने प्रतिज्ञा किया ना कि मैं आपको हरा दूंगा, अगले दिन शस्त्र लेने को मजबूर कर दूंगा। तो ऐसा भयंकर युद्ध करते हैं भीष्मदेव, युद्ध नहीं करते एक्चुअली, भक्ति उनकी जो प्रेम है उसके वजह से वो बोलते हैं। तो भीष्म के भक्ति की वजह से भगवान हार जाते हैं उससे और शस्त्र को उठाते हैं उनके सामने। तो कहते हैं कि ऐसे शुद्ध भक्ति के प्रभाव से भीष्म ने आपको परास्त किया और इसी शुद्ध भक्ति की वजह से यशोदा आपको बांध सकी। आप तो परम भगवान हैं, आप सारे सृष्टि के रचयिता हैं, आपको भी वो बांध देती है केवल प्रेम की वजह से। शुद्ध भक्ति के प्रभाव से सत्यभामा जैसे पत्नी ने आपको खरीद लिया था, उसके भक्ति के लिए आपने उनको अपने आप को बेच दिया और स्वयं भगवान होने पर भी ग्वाल बाल आपने कंधे पर चढ़े, है ना? आप तो विश्वों को निर्माण करने वाले हो, फिर भी आप गोप श्रीधामा जो है राधा रानी का भाई, उसको आपके कंधे पर लेकर सजा के रूप में घुमाते हो ये सब आपके प्रेम का लक्षण है, आप हमेशा भक्ति से ही वश में आते हो। ये बहुत बड़ा रहस्य है और ये रहस्य जो लोग भक्त नहीं है वो समझ नहीं पाते हैं। वो कहते हैं कि जो लोग धन के लोभ में हैं, जो लोग रूप के लोभ में हैं, शरीर के भोग के लोभ में हैं, जिनको दुनिया की वस्तुएं चाहिए, ऐसे लोग वैष्णवों के इन महान गुणों को समझ नहीं पाते हैं और भक्ति का इस रहस्य को वो समझ नहीं पाते हैं। फिर वो कहते हैं कि जब वो लोग भक्ति को प्राप्त करने के लिए तड़पते हैं, सॉरी व्हेन दे बेग फॉर डिवोशनल सर्विस द पीपल डिफीट यू 2 and 4 times ओवर, When they beg for devotional service, the people make you their captive. केवल मांगने से आप भक्ति देते हो और उनके वश में हो जाते हो, इस तरह से वो भगवान का गौरव करते हैं।
अलग अलग रूप में भगवान का वर्णन करते हैं। फिर बोलते हैं कि इसीधर को भगवान बोलते हैं कि मुझे आपसे अभी भी वो केले के पत्ते चाहिए, तो कहते हैं कि कोई बात नहीं आपको दे दूंगा। वो कहते हैं ले लो, मैं आपको वरदान दे रहा हूं, मैं आपसे नाराज नहीं हूं, मैं आपको देना चाहता हूं। तो श्रीधर कहते हैं कि जो ब्राह्मण पुत्र रोज मेरे पास बिना कॉइन्स यानी कि नाणी न देते हुए रोज मुझसे चिंता था केले के पत्ते, वो मेरा जन्म जन्मांतर का मालिक बने, मेरा स्वामी बना रहे। आप समझ में आ रहे हैं? वो महाप्रभु को ही बोल रहे हैं कि आप मेरे स्वामी बने रहे, जिस तरह से रोज आप आकर मुझसे केले के पत्ते, केले के फूल और फल छीना करते थे बिना पैसे दिए, वैसे रोज आप आते रहे और मुझसे केले के पत्ते छीनते रहे। यही मेरे कहते, जिसको भगवान बोल रहे हैं कि आपको दुनिया का राजा बना दूंगा, अष्ट सिद्धि दे दूंगा, वो क्या मांग रहे हैं उनसे कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप बस रोज जैसे आते थे वैसे आते रहो और रोज मुझसे वो बहस करके दो घंटे केले के पत्ते और फूल और फल जो है वो लेते रहो। जो ब्राह्मण रोज आकर मुझसे झगड़ा करता था वो मेरा स्वामी बना रहे, वो व्यक्ति उनके दो चरण कमल मेरे शीश पर रखकर मुझे वरदान देता रहे। बार बार श्रीधर ने यही वाक्यों को दोहराया और श्रीधर के शरीर पर रोमांच खड़े हो गए। हाथ उठाकर उसने जोर जोर से हरी हरी पुकार कर रोता रहा। श्रीधर का ये महान भक्ति भाव देखकर सब वैष्णव गदगद हो गए, उनको भी रोना आया। फिर भगवान ने कहा हे श्रीधर, मैं तुम्हें बड़ा राज्य दूंगा, आपको राजा बना लूंगा। बोले मुझे नहीं चाहिए, मुझे केवल आप चाहिए स्वामी के रूप में। श्रीधर मैं तुम्हारा नौकर हूं, भगवान कह रहे हैं मैं आपका सेवक हूं, देखो मैं आपके सामने कैसे प्रकट हो गया हूं, लेकिन मैं अभी आपको साथ बहस करने को नहीं आया हूं, मैं आपको अभी शुद्ध भक्ति देता हूं। ऐसे बोलकर भगवान कहते हैं चैतन्य महाप्रभु कि शुद्ध भक्ति वेदों में भी उसका वर्णन नहीं है, वेदों में भी शुद्ध भक्ति का वर्णन छुपा हुआ है, वेदों में वो वर्णन आपको प्राप्त नहीं होगा, तो ऐसी भक्ति जो वेदों में प्राप्त नहीं है हे श्रीधर मैं आपको दे दूंगा। इस तरह से सब वैष्णव लोग, जैसे वहां पर हरिदास ठाकुर है, वहां पर अद्वैत आचार्य है, वहां पर सारे वैष्णव खड़े हुए हैं, सब लोग जय 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 श्रीधर जय श्रीधर बोलते हैं। आप बोलिए जय श्रीधर जय श्रीधर, इसे गौरव करते हैं क्योंकि वो सबके आंखों के सामने शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर लेता है। इस तरह से चैतन्य यहां पर वृंदावन दास ठाकुर लिख रहे हैं कि कैसे हम शुद्ध भक्त को पहचाने, ये इसकी पहचान है कि जिनके पास धन है, अनुयायी है, सुंदर शरीर है, विद्या है, इससे हम शुद्ध भक्त को नहीं पहचान सकते। शुद्ध भक्त वो है जो भगवान के लिए अपना विद्या, अपना धन दौलत, सौंदर्य, यश, कीर्ति सब कुछ छोड़ देता है, भगवान के लिए अर्पण करता है, वो शुद्ध भक्त की पहचान है। शरीर से फटीचर क्यों ना हो, रहने का घर फटीचर क्यों ना हो, उसके बाद कोई धन दौलत ना हो, उसके हृदय में जो शुद्ध भक्ति का धन दौलत है उसी को देखकर भगवान उसके दास बन जाते हैं, वही शुद्ध भक्त का लक्षण है। श्रीधर जिसने बनाना यानी केले के पत्ते और केले के रूट्स और केले का फूल बेचा, उसने शुद्ध भक्ति का बड़ा वरदान भगवान से प्राप्त कर लिया। जो अनंत कल्पों तक, अनंत लाखों वर्ष की पूजा करने के बाद में, राजा बनने के बाद में भी किसी को प्राप्त नहीं होता है, ऐसा वरदान उन्होंने भगवान से प्राप्त कर लिया। फिर जो व्यक्ति गर्व से धन दौलत का गर्व करता है वो कभी भी इस तरह का वरदान प्राप्त नहीं कर सकता है। फिर किसको वो शक्ति है जो वैष्णवों को समझ सके, वैष्णवों के पास अपने आप ही अष्ट सिद्धियां प्राप्त होती हैं जो उसका इस्तेमाल कभी भी नहीं करते। जैसे आपके किसी में अगर करोड़ों रुपया हो और आप एक रुपये अपने लिए खर्च नहीं करेंगे तो कैसा होगा? आप ऐसा फटा हुआ शर्ट पहनेंगे, फटा हुआ कपड़ा पहनेंगे, आपके जेब में करोड़ों अरबों रुपए हैं लेकिन आप कभी उसको खर्च ही नहीं करते, ऐसे वैष्णव होते हैं। कैसे? मतलब इसका अर्थ क्या होता है कि उनके हृदय में वो दौलत है जिसे वो भगवान को खरीद सकते, जो भगवान सारे अनंत ब्रह्मांडों के मालिक है, जो ब्रह्मांड जो अनंत वैकुंठों के मालिक है, जो गोलोक वृंदावन द्वारका मथुरा अयोध्या के मालिक है, जो सारे धन दौलत सारे सृष्टि नर निर्माण के उगम है, ऐसे भगवान को खरीदने का जो कीमत है वो उनके हृदय में उपस्थित रहता है, बाहर से फटेचर दिखाई पड़ते हैं। इसलिए कभी भी अगर कोई यहाँ पर लेखक लिख रहे हैं जैसे कि वो पुकार रहा था रात को हरी हरी बोल के, लोगों को लग रहा था कि भूखा होगा बेचारा, दर्द में भूखा इसलिए पुकार रहा है ना। लेकिन ऐसा बाहरी रूप से जिसको कष्ट होते हुए नजर आ रहा है वो वैष्णव के लिए कष्ट नहीं होता है। वो सो कॉल्ड दुख जो होता है वो वैष्णव के लिए परम आनंद का उगम होता है। वैष्णव लोग ऐसे घटनाओं को एक शुद्धिकरण के रूप में देखते हैं, भगवान की कृपा के रूप में देखते हैं, और उसी सो कॉल्ड तथाकथित दुख में परम आनंद का अनुभव करते हैं। ठाकुर भक्ति विनोद भी कहते हैं कि आपके सेवा में सेवा करते हुए जो भी सुख दुख का अनुभव होता है वो मेरे लिए परम आनंद का उगम है। खास करके आपके सेवा में सेवा करते हुए जो मुझे दुख प्राप्त होता है उससे मैं अति आनंद का अनुभव करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ ऐसे दुखों को अनुभव करते हुए जो मुझे अनुभव होता है उससे मेरी अविद्या नष्ट हो जाती है। जो भी अविद्या का दुख होता है ना, अविद्या मतलब मैं शरीर नहीं हूँ, जानते नहीं हम लोग, अपने आप को पहचानते नहीं है, वो अविद्या की वजह से दुख होता है, वो दुख जो है भगवान की सेवा में होने वाले दुखों को सहन करने से पूर्णतः नष्ट हो जाता है। इसलिए भक्तों के जीवन में जब दुख आता है तो हमको दुख नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर एक दुख के साथ में हमारे पाप कर्म जो है एक एक करके नष्ट होते जा रहे हैं। और जब सुख आता है जीवन में तो बहुत खुशियाँ मनानी चाहिए, क्योंकि हमको जानना चाहिए जब सुख आता है तो हमारे पुण्य कर्म एक एक करके कम होते जा रहे हैं। हाँ, इसलिए सुख आने से और दुख आने से दोनों तरफ से भक्तों को सुख नहीं करना चाहिए, दुख नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कर्मों का खेल है, इसको शुरुआत है और अंत है, बिगिनिंग और एंड है उसको। हाँ, अद्यंतु वंतु कौनते या नते तु नते शुरमते बुधा, ऐसे वस्तुओं में भक्त लोग ज़्यादा रुचि लेते नहीं हैं या उनको फर्क भी नहीं पड़ता है जिन वस्तुओं की शुरुआत होती है और अंत होता है। हाँ, तो इस तरह से यहाँ पर गौरव कर रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर श्रीधर कोलवेचक का। वो क्या कहते हैं, जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत को पठन करते हैं लेकिन शुद्ध भक्ति को अपने जीवन में अपनाते नहीं हैं, समझ जाइए कि उनकी बुद्धि नष्ट हो गई है। यानी कि जो लोग भागवत का पाठ करते हैं ना बाहर बिजनेस के रूप में, भागवत सप्ताह करते हैं केवल पैसा कमाने के लिए, समझ लीजिए कि ऐसे व्यक्तियों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। और जो व्यक्ति भगवान के भक्तों की निंदा करता है वो कालवश कालांतर में पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। जो लोग, अभी सुनिए ये आपको जो अभी कथा सुनाई खोलवेचक श्रीधर नाम के महान भक्त की, उस कथा सुनने का क्या परिणाम है, जो लोग जगे हुए थे और जो लोग सुन रहे थे इनके लिए वरदान है। वृंदावन दास ठाकुर अभी वरदान को बोलने जा रहे हैं, वो क्या वरदान है, वरदान यह है जिन्होंने भी खोलवेचक श्रीधर का ये सुंदर वर्णन सुना और शुद्ध भक्ति को प्राप्त करने का वर्णन सुना और उन्होंने जो प्रार्थनाएं श्रीधर ने भगवान को अर्पण की उनको भी सुना, उन सब लोगों को श्री कृष्ण भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम की प्राप्ति होगी। हरि बोल। जो व्यक्ति वैष्णवों की निंदा नहीं करते हैं वो कृष्ण भगवान की प्राप्ति करते हैं। जो व्यक्ति भगवान के भक्तों की निंदा नहीं करते हैं वो भगवान के चरणों के प्रति प्रेम और भक्ति प्राप्त करते हैं। इसलिए वैष्णवों की निंदा कभी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वैष्णवों की निंदा करना ये सबसे महान पाप है। और जो कोई वैष्णवों की निंदा नहीं करता है वो बहुत ही बहुत ही बहुत ही भाग्यवान है, ऐसे वृंदावन दास ठाकुर यहाँ बता रहे हैं। अभी वैष्णव कौन है, आप बोलेंगे तो कल आया, वो वैष्णव नहीं, ये 10 साल से ये वैष्णव है। हाँ, ऐसा नहीं होता है। जो एक बार भी जीवन में प्रेम से भगवान के नाम को पुकारता है वो वैष्णव है। रूप गोस्वामी कहते हैं ऐसे व्यक्ति को दंडवत प्रणाम करना चाहिए, कम से कम मन से क्यों ना हो, मन से दंडवत प्रणाम करना चाहिए उसको। इसके आगे जाकर जो भगवान का नाम जप करता है वो दीक्षा प्राप्त कर चुका है, उसको प्रत्यक्ष दंडवत प्रणाम करके आदर करना चाहिए। और जो सिद्ध हो चुका है भक्ति में उससे शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, उससे उपदेश सुनना चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए। इसका मतलब भगवान की दृष्टि से कोई जूनियर और सीनियर नहीं है, ये ध्यान में रखना, क्योंकि हमको जो लगता है जूनियर है वो पता नहीं पिछले जन्मों में कई सिद्धियां प्राप्त करके थोड़ा सा काम बचा होगा उसका और हमारे 10 साल बाद में भक्ति में आया होगा, हो सकता है इसका जन्म हमारे 10 साल में भक्ति में आने के बाद 10 साल के बाद में हुआ रहेगा, तो हम बोलेंगे हमारे उपदेश के योग्य है ये, हम इसको उपदेश देना चाहिए, ऐसा आपको लगता होगा। लेकिन भगवान के हिसाब किताब से और कर्मों के हिसाब किताब से कौन कौन सी अवस्था में है
इसका अंदाज हम कभी लगा सकते नहीं हैं। इसलिए वैष्णवों को जज भी नहीं करना चाहिए कि ये सीनियर है, ये जूनियर है, ये अच्छा है, ये बुरा है। जो भी भगवान के नाम का जप करता है वो सबका आदर करना चाहिए, नंबर वन। और दूसरी बात, उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तो भगवान के भक्तों की निंदा करने से हमारा ज्ञान, हमारा पुण्य, हमारा सारा सत्कर्म जो है वो पूर्णतः राख बन जाता है, कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। कितना भी हमने सेवा किया होगा, कितने भी भक्तों को पसंद किया होगा, भगवान की कितनी आरती पूजा और दान पुण्य किया होगा, कितना अन्य भक्तों का सेवा किया होगा, लेकिन अन्य भक्तों की सेवा करने के बाद भी अगर किसी भक्त की निंदा करते हैं तो अन्य भक्तों की सेवा करने के बाद जो लाभ हुआ है उसको भी हम जलाकर भस्म कर देते हैं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी वैष्णव अपराध के धंधे में नहीं पड़ता है। दिस इज अ वेरी थर्ड क्लास बिजनेस, वैष्णव भक्तों की निंदा में लगना, उसकी चर्चा में लगना, और मन से, नए मन से, दिल से, नए दिल से कैसे भी प्रकार से, इस जिह्वा से वैष्णवों के विचार में, वैष्णव के बारे में गलत विचार, गलत मत, टीका टिप्पणी, निंदा करना, ये हमारे जीवन का सबसे बढ़िया, सबसे बड़ा घाटे का सौदा है। आप भले कोई बड़ी बड़ी सेवा मत करो, लेकिन जरूर ही प्रयत्नपूर्वक वैष्णवों की निंदा करने से बचो। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जिस प्रकार से श्री कृष्ण भगवान, जो भी व्यक्ति उनका नाम बिना अपराध के पुकारता है उसको वो बड़े प्रेम से इस दुनिया के जंजाल से मुक्त कर देते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। वो बार बार कह रहे हैं सच है, ये सच है, ये सच है, दिस इज ट्रूथ, दिस इज ट्रूथ, दिस इज ट्रूथ, ऐसे बोल रहे हैं। इसका मतलब भगवान का नाम बिना अपराध का लेना चाहिए। अपराध कई प्रकार के होते हैं, उसमें सबसे बड़ा अपराध वैष्णव अपराध है। इसको मदांध हस्ती अपराध कहा गया है, जो हाथी शराब पीकर पागल होता है और एक सुंदर बगीचे में घुसता है तो कौन से फूल बचेंगे, बच सकते क्या? नहीं, ये हमने बहुत मेहनत से बनाया, 10 साल से रहे, वो सब नष्ट कर देगा। उस तरह से वैष्णवों का अपराध जो है, ये सब अपराधों का स्वामी है। ये सबसे बड़ा नुकसान कर देता है। इसलिए मैं ऐसे वैष्णवों के चरणों में बार बार दंडवत प्रणाम करता हूँ जो ऐसे अपराधों से मुक्त हैं और जो ऐसे अपराध शून्य होकर कृष्ण भगवान का नाम लेते हैं, क्योंकि ऐसे भक्तों को श्री कृष्ण भगवान तुरंत ही अपने शुद्ध प्रेम भक्ति को प्रदान करते हैं और अपने धाम में लेके जाते हैं। बोलो बोलो जय श्रीधर भक्त भगवान की। ये जो कथा है कुलवेज श्रीधर की, ये इतनी प्रेरणादायक है। बहुत लोग गरीब होते हैं ना, हमारे सामने रहते हैं, बहुत गरीब रहते हैं, उनको खाने पीने को भी ठीक से मिलता नहीं है। लोग भी कोसते रहते हैं, अरे तुम्हारे क्या भगवान है, तुम अभी इतना भक्ति किया, उनका इतना नाम जप किया, इतना नियम पालन करते हो, क्या दिया तुम्हारे भगवान ने तुमको। ऐसे लोगों को निंदा भी करते रहते हैं, क्योंकि श्रद्धा भी ऐसी हिलती रहती है, अरे कैसे होगा, अभी सच बोल रहे, इतना दिन से भक्ति कर रहा हूँ, ना पगार बढ़ रहा है, ना नौकरी बढ़ रही है, ना कुछ खाने को मिल रहा है, ना बेटी की शादी हो रही है, हाँ ना फी भरने को पैसा है, ना लोन इंस्टॉलमेंट भरने को पैसा हो रहा है, क्या हो क्या रहा है, इतना सब भक्ति करके लाभ क्या है। तो लोग हमको अपनी जीवन में जितनी थोड़ी बहुत भक्ति करते हैं उसका लाभ लेने के लिए हमको प्रवृत्त करते रहते हैं, अरे तुमने मांगा नहीं भगवान से, तुमने इतना जप किया उसको मांगा नहीं कि धन दो, थोड़ा सा अच्छा बीवी दो, अच्छे बच्चों को अंक आने दो, मार्क्स मिलने दो। तो उनके लिए ये कहानी बहुत प्रेरणादायक है, क्योंकि भगवान हमारे गरीबी से या अमीर से प्रभावित नहीं होते। आपके पास सुंदरता है या बहुत सुंदर है या बहुत कुरूप है, उससे प्रभावित नहीं होते। आप बहुत हेल्थी हो और बहुत स्ट्रांग हो या बहुत कमजोर हो, उससे प्रभावित नहीं होते। वो केवल हृदय की भक्ति देखते हैं। इसलिए बाहर से फटीचर होने के पश्चात भी वो क्या बोल रहे श्रीधर को, कि तुम्हारे अंदर बहुत बड़ा धन छुपा हुआ है, तुम छुपा रहे हो, मैं एक दिन इस धन को पूरी दुनिया को दिखाऊंगा। वो कौन सा धन था? वो उन्होंने कोई करोड़ रुपये दिखाया नहीं कि इसकी झोपड़ी में छुपाया था जमीन के अंदर, वो नहीं दिखाया उन्होंने। उन्होंने जब भक्तों को भेजा तो भक्त लोग समझ गए थे कि यो कोई साधारण भक्त नहीं है। अगर चैतन्य महाप्रभु आज के दिन में किसी को बुला रहे हैं तो वो महान भक्ति होना चाहिए। और उसकी क्या महानता थी, कितना महान भक्त होने पर भी नवद्वीप में किसी को कोई इसको जानता नहीं था। मतलब कोई यश और कृति भी उसके बाद नहीं थी कि भाई ये बहुत बड़ा भक्त है, ये बहुत सिद्ध भक्त है, इसको बहुत निरीक्षा है, इसको कोई अपेक्षा नहीं है, कोई एकदम विरक्त है। ऐसा लोग जानते हैं ना किसी को, स्वयं में वो विरक्त होंगे, लोग जानते हैं कि विरक्त है करके, लेकिन पूरे नवद्वीप धाम को उनकी पहचान उस दिन हुई जिस दिन चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं उनको पुकारा और लेके आने को बताया। तो ऐसे यश से विमुक्त रहते हैं भक्त लोग,
कोई उनको प्रसिद्धि नहीं चाहिए, कोई पोस्ट नहीं चाहिए उनको, कोई स्थान नहीं चाहिए, कोई धन दौलत, कोई प्राप्ति, कोई लाभ, इसकी इच्छा से भक्ति नहीं करते। इसलिए हमारे जीवन में अगर बहुत कष्ट भी आते होंगे फिर भी हमको चांस है। क्यों? क्योंकि अगर हर आने वाले कष्ट को हम धन्यवाद देंगे भगवान को, थैंक यू माय लॉर्ड, मैं जानता हूं कि आप हमारे लिए कभी बुरा नहीं करेंगे, जो हमारे कल्याण में होगा वही हम आप करेंगे, ये हमें विश्वास है भगवान, इसलिए अगर आपने मुझे कष्ट दिया है, थैंक यू वेरी मच। मेरी आपको एक ही प्रार्थना है कि वो कष्ट को सहन करने के लिए मुझे आप शक्ति दो और मेरे मुख से और हृदय से आपके लिए धन्यवाद निकले, ऐसी व्यवस्था करो। यही हमारे जीवन का रहस्य है। श्रीधर कोल्वेज जीवन के हम लोग यही सीख सकते हैं कि इतना सारा कष्ट होने पर भी, आधे पेट भूखा रहने पर भी, वो कभी भी उसने आधा धन गंगा की सेवा में लगाने में कभी चुका नहीं हुआ। बोले आज तो बहुत बिजनेस कम हुआ, आज थोड़ा सा 10% दे देंगे, ऐसा नहीं किया उसने कभी भी। जो भी मिला उसका आधा धन उसने भगवान की सेवा में लगाया। चैतन्य भागवतकार यहाँ पर लिख रहे हैं कि ऐसे भक्त बहुत विरला होते हैं जो दुनिया की हर स्थिति में अपने प्रण को छोड़ते नहीं है, अपने नियम को, अपने वादे को कभी निभाने में चुकते नहीं है। इसलिए अगर हम जीवन में गरीब हैं, कष्टमय हैं, हमको आज हमारा शरीर रोग से भरा हुआ है, हमको पीड़ा हो रही है, कष्ट हो रहा है, कैंसर हुआ है, सब धन दौलत खत्म होते जा रही है, पीड़ा खत्म नहीं हो रही है और हम भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, तो हमको निरुत्साह होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपका सारा जीवन, क्योंकि आप भगवान के नाम का जप करते हैं, भगवान के सुपरविजन में आपका जीवन चल रहा है, आपके जीवन की हर गतिविधि जो है भगवान स्वयं कंट्रोल कर रहे हैं, स्वयं सुपरवाइज कर रहे हैं इसको, इसमें आपको विश्वास रखना चाहिए। और पूरे जीवन भर में धन प्राप्ति नहीं हुआ तो भी दुख नहीं करना चाहिए, और धन प्राप्ति होती भी है तो बहुत सुख भी नहीं करना चाहिए, अरे वाह अभी तो मैं भी ये खरीदूंगा, वो खरीदूंगा, ऐसा करूंगा। भगवान का भक्त जो होता है वो गरीब रहने पर दुखी नहीं होता है और अमीर बनने पर सुखी भी नहीं होता है, यश मिलने पर आसमान में नहीं चढ़ता है और पराजय पर और अपयश मिलने पर दुखी नहीं होता है। मात्रा स्पर्शांश तो कोमते या शीतोष्ण को दुखदा, वो गर्मी सर्दी जिस प्रकार से आती है उस प्रकार से इन वस्तुओं को देखता है, वो जानता है कि धन दौलत आएगी तो वो जाएगी भी और नहीं रहेगी तो आएगी भी, स्वास्थ्य आएगा जाएगा, ये तो सूरज और चांद की तरह है, रोज आते जाते रहते, उस पर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। जो मेरा भक्त होता है, भगवान कहते हैं कि ऐसे वस्तुओं के आने से और ऐसी वस्तुओं के जाने से वो कभी भी डिस्टर्ब नहीं होता है, क्योंकि उसका मन हमेशा मेरे चरणों में, भगवान कहते हैं मेरे चरणों में स्थिर रहता है, इसलिए उसको ऐसे वस्तुओं के आने से और जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हमारा मन हमको हमेशा भगवान के चरणों में लगाना चाहिए। अगर हम अपना हृदय को, अपने मन को भगवान के चरणों में स्थिर करने में समर्थ हो गए, सफल हो गए, तो ये गरीबी और अमीरी और ये बीमारी और आरोग्य और ये स्वास्थ्य कभी हमको डिस्टर्ब नहीं करेगा। बुढ़ापा भी आएगा, हम जवान रहेंगे या चुस्त रहेंगे या बुढ़ापे हो जाएंगे, कुरूप बन जाएंगे, फिर भी हम डिस्टर्ब नहीं होंगे। यही रहस्य है जीवन का। सबसे कठिन परिस्थिति में अगर सुखी रहना है व्यक्ति को तो क्या करना चाहिए उसको? बहुत कष्ट है, धन के रूप से कष्ट है, शरीर के रूप से कष्ट है, फैमिली की तरफ से कष्ट है, समाज की ओर से कष्ट है, हर तरफ से कष्ट ही कष्ट है, फिर भी उसको सुखी रहना है तो क्या करना चाहिए? उसको केवल भगवान के चरणों में अपना मन लगाना चाहिए, तब जाकर सारे दुखों के प्रभाव से वो तत्क्षण मुक्त हो जाता है। और ऐसे आदर्श भक्त जो अपने जीवन में इस वस्तु को प्रस्तुत कर चुके हैं, ये सब चैतन्य चरितामृत में, श्रीमद् भागवत में इनका वर्णन मिलता है, इसको इस लोग पढ़ना चाहिए। केवल पढ़ने से भी भक्ति प्राप्त होती है, ऐसा भी बताया है। हाँ, केवल श्रवण करने से, केवल सुनने से, केवल पढ़ने से, वृंदावन दास ठाकुर जो व्यास देव जी के अवतार है वो वरदान दे रहे हैं, केवल सुनने से आपको श्री कृष्ण के चरणों में भक्ति प्राप्त होगी। कितना भाग्यशाली हमारा जीवन है। हाँ, इसलिए हम सब आपको विनती करते हैं कि भगवान के नाम के जप को कभी छोड़ना नहीं। आप अगर नहीं कर रहे हो तो कीजिए, उसको स्वीकार कीजिए अपने जीवन में, अपने हृदय को, अपने मन को, आत्मा को भगवान के चरणों में स्थिर करने का प्रयास कीजिए। यही एक मौका है। आगे जन्म में हम कुत्ता बनेंगे, बिल्ली बनेंगे, या चिपकली बनेंगे, या मछली बनेंगे, नोबडी नोज, कोई जानता नहीं है। अभी मौका है, अभी मनुष्य बने हुए हैं, भले गरीब हैं, भले अनपढ़ हैं, अभी मनुष्य बने हुए हैं, हमको मौका है उनका नाम लेने का, और हम लेंगे तो ये जीवन सफल होगा। इसके अंत में हम भगवत धाम में जाएंगे भगवान के चरणों की भक्ति करने के लिए, और जीवन हमारा सफल हो जाएगा। हरे कृष्णा, बोलिए हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, खोलवेच श्रीधर की जय। गौ प्रेमानंदे
थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।